नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और दीर्घकालिक विकास यात्रा का महत्वपूर्ण स्तंभ है। कृषि और ग्रामीण परिवर्तन विषय पर बजट उपरांत वेबिनार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए नियमित रूप से कई कदम उठाए हैं।
कृषि, विश्वकर्मा, ये सब हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। एग्रीकल्चर भारत की लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट जर्नी का स्ट्रेटेजिक पिलर भी है और इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने कृषि सेक्टर को लगातार मजबूत किया है।
श्री मोदी ने कहा कि इस साल का बजट अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है।
दुनिया के बाजार खुल रहे हैं, ग्लोबल डिमांड बदल रही है, हमारे पास डाइवर्स क्लाइमेट है, हमें इसका पूरा फायदा उठाना है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन, उस विषय में हम बहुत समृद्ध है। इस साल का बजट इन सब बातों के लिए अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की दिशा तय करता है और एक्सपोर्ट ट्रेंड को बढ़ावा देता है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार कृषि में प्रौद्योगिकी लाने पर विशेष जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि आज ई नाम के माध्यम से बाजार तक सभी की पहुंच हो गई है। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वामित्व योजना, पीएम ग्रामीण सड़क योजना और स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता जैसे प्रयासों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत की ईंधन आयात पर निर्भरता कम करने और देश को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बायोगैस सबसे अच्छा विकल्प है। उन्होंने ये बात पुणे के यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन अकादमी में आयोजित कंप्रेस्ड बायोगैस सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर कही। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के बिना भारत का औद्योगिक विकास असंभव है। ओडिशा में कटक के मुंडोली में CISF के 57वें स्थापना दिवस समारोह में श्री शाह ने कहा कि ये बल देश भर में प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अनिश्चितता के इस युग में प्रासंगिक रहने का एकमात्र रास्ता आत्मनिर्भरता है। श्री सिंह ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित रक्षा और समुद्री संवाद सागर संकल्प भारत की समुद्री शान की वापसी का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने उद्योगपति अनिल अंबानी और रिलायंस पावर से जुड़ी कंपनियों में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में आज मुंबई और हैदराबाद में कई स्थानों पर तलाश अभियान चलाया। अधिकारियों के अनुसार ईडी की लगभग 15 टीमों ने आज मुंबई में मुख्य रूप से 10 से 12 स्थानों पर छापेमारी की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार देश में निर्यातकों को समर्थन देने के लिए सभी नीतिगत उपाय और निर्यात प्रोत्साहन मिशन का उपयोग करेगी। नई दिल्ली में उन्होंने अमरीका, इसराइल और ईरान संघर्ष के कारण व्यापार में आई बाधाओं के बारे में बताया। श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने इन मुद्दों पर दैनिक आधार पर विचार करने के लिए अंतर मंत्रालयीय समूह का गठन किया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने आज नई दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में भाग लिया और पर्यावरण सहयोग पर नवीनीकृत समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स छत्तीसगढ़ में 26 मार्च से 6 अप्रैल के बीच होंगे। पहले ट्राइबल गेम का आयोजन रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में किया जाएगा और इसमें एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, भारोत्तोलन, तीरंदाजी, तैराकी और कुश्ती जैसे 7 खेल शामिल होंगे। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला चीन के ली शी फेंग से होगा। लक्ष्य सेन ने कल बर्मिंघम में पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया था। लक्ष्य सेन ने प्री क्वार्टर फाइनल में हांगकांग की एनजी एंगिस को पराजित किया। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों यानम, गुजरात, गोवा और कोंकण के तटीय क्षेत्रों में कल तक गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान लगाया है। इस सप्ताह भर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।